ओ दादी जी आपका क्या कहना। दादी जी आपका क्या कहना, तह दिल से कहें यूं ही संग रहना संग रहना। ओ दादी जी आपका क्या कहना, तह दिल से कहें यूं ही संग रहना हाजी संग रहना। दादी जी आपका क्या कहना। आपने हमको जो प्यार दिया, उस प्यार से खिल गया मन आंगन। आप बाप समान करते आदर, सबको लगता है अपनापन। एक मीठे बोल में क्या जादू, पल में मुश्किल आसान करना आसान करना। ओ दादी जी आपका क्या कहना।
ओम शांति। एक बहुत प्रसिद्ध जादूगर था और उसके पास एक ऐसी कला थी कि वो वस्तुओं को गायब कर देता था और लोग उसके ऐसे प्रशंसक बन गए, ऐसे प्रशंसक बन गए कि उसका एक भी शो नहीं छोड़ते थे। और कुछ कुछ लोग तो जैसे उसे भगवान ही मानने लगे थे। तो जहां भी जाता कुछ लोग वहां पहुंच जाते और उन्हें बहुत आनंद आता उसके सारे करतब, जादू का प्रदर्शन और उसकी जो विशिष्ट कला थी वस्तुओं को अदृश्य करने की, वो देखकर। एक बार एक समुद्री जहाज पर उसने अपना खेल खेला, वो शो जहाज पर था और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और वो अपना खेल दिखा रहा था जादू का, कि अचानक वहां पर तूफान आ जाता है और वो जहाज डूबने को लगता है। तुरंत छोटी छोटी सुरक्षा नौकाएं आती है और सब लोग उसमें चढ़ जाते हैं, पर वो जो कुछ उसके प्रशंसक होते हैं वो उससे कहते हैं, ये आपने कैसे कर दिया, क्या कैसे कर दिया, कैसे कर दिया क्या। और धीरे धीरे वो बड़ा जहाज डूब जाता है। वो कहते हैं, आपने इतना बड़ा जादू कैसे दिखा दिया, इतनी बड़ी जहाज को ही गायब कर दिया, ये जादू कैसे किया। वास्तव में उसने जादू से जहाज को गायब नहीं किया है, पर उसके भगत इतने बन गए हैं कि वो जो कुछ करता है उनको लगता है ये इसी की का जादू है, ये इसी ने किया हुआ है। तो वो उसको पूछते हैं कि आपने ये इतना बड़ा जादू कैसे कर दिया कि पूरी की पूरी पूरे जहाज को ही गायब कर दिया, गायब, डुबोना नहीं, गायब। इसे कहा जाता है पर्सनैलिटी वर्शिप, पर्सनैलिटी वर्शिप। कोई एक व्यक्ति में सारे अर्थ समाहित हो जाते हैं। कोई एक व्यक्ति ही केंद्र लगने लगता है जीवन का, कोई एक व्यक्ति में ही सारे गुण सारी विशेषताएं नजर आने लगती है। जगदीश भाई ने अपनी किताब में लिखा है, ब्रह्मा कुमारीज इज नॉट अबाउट पर्सनैलिटी वर्शिप। ब्रह्मा कुमारी संस्था किसी व्यक्तित्व की पूजा नहीं है, सिद्धांत है। यहां पर किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, और यदि किसी व्यक्ति को सब कुछ बना दिया गया तो वहां पर धीरे धीरे गिरावट चालू होती, जैसा भक्ति मार्ग में होने लगा द्वापर से। तो एक तो इसके दो पहलू हैं, द्वापर से इस संसार में सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया हुआ है? योगियों ने, महापुरुषों ने, साधु संन्यासियों ने, धर्मस्थापकों ने। क्यों? अपनी वजह से नहीं, दूसरों की वजह से। उनका अपना कोई दोष नहीं था, पर दूसरों ने उन्हें क्या बना दिया? उनके जाने के बाद भगवान बना दिया। कितने महापुरुष आए, अच्छी अच्छी बातें सुनाई, उन्होंने कभी नहीं कहा किसी से कि मेरी शरण में आओ, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, परंतु उनके जाने के बाद लोगों ने क्या कर दिया? उन्हीं को भगवान बना दिया, महात्मा बना दिया, या किसी का अवतार बता दिया। और इस बात ने इस संसार की बहुत बहुत हानि की है। महात्मा बुद्ध ने कहीं नहीं कहा है कि मेरी पूजा करो, महात्मा बुद्ध ने कहीं नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बनाओ, परंतु शिष्यों ने क्या कहा? बुद्धम शरणम गच्छामि, हम तुम्हारी शरण में आते। वो तो जाते समय भी बोल के अपो दीपो भव, आनंद अपना प्रकाश खुद बनो, अपना दिया खुद बनो, मुझे अपना दिया मत बनाना। बुद्ध ने तो कभी कहा ही नहीं कि किसी की पूजा करो, किसी के शरण में जाओ। पर संसार में आज सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी है? महात्मा बुद्ध से ज्यादा शायद ही किसी और की मूर्तियां होगी। कोई कोई मंदिर में 1-1 हजार मूर्तियां हैं बुद्ध की, एक ही मंदिर में। जब भी वो जब था तो उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि मेरी, यहां तक कि बुद्ध शब्द कहां से निकला है, क्योंकि बुद्ध की प्रतिमाएं मूर्तियां इतनी ज्यादा थी कि ये शब्द जब मूर्तियां उधर पहुंची, उधर के देशों में, तो वहां से वो बुद्ध शब्द हो गया कि बुद्ध का अर्थ ही है मूर्ति, बुद्ध पूजा। व्यक्तित्व की पूजा नहीं करनी है, किसी भी व्यक्तित्व की, किसी भी देहधारी की, चाहे वो कोई भी हो। एक तो ये पहलू है, और दूसरा जो बाबा ने संडे की मुरली में दादियों को कहा कि अपने में फंसाने वाली तो नहीं हो ना, आपको देखे और उनको क्या याद आए? बाप याद आए। आपको देखे और उनको क्या याद आए? ये भगवान के महावाक्य सुनाने वाले हैं, स्वयं में फंसाने वाली नहीं। कुछ समय पहले बहुत यज्ञ के इतिहास में जब सेवाएं आरंभ हुई थी, और जो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन आई थी, पहले तो जीत्री, पहले तो जो दादिया, उसके बाद 1950s के बाद जो सारे वरिष्ठ भाई, उसके बाद वाली जनरेशन जो आज वरिष्ठ बहनें हैं सारी। तो वो कोई बहन अनुभव सुना रहे थे कि सब लोग स्टेज पर बैठे थे और चीफ गेस्ट आए हुए थे, चीफ गेस्ट भाषण दे रहे थे, और जो बड़ी बहन जी थी उसकी बहुत तारीफ की कि ये बहन जी ऐसी है, ये बहन जी वैसी है, ये बहन जी वैसी भी है, ये बहन जी वैसी भी है। तो वो जो बड़ी बहन थी उसके बाजू में एक दादी बैठी थी, तो उस दादी ने कहा, देखा तुम्हारा नाम लिया। तो वो जो बड़ी बहन है उसको लगा खुशी हुई, पर बाद में उसको पता चला ये जो दादी ने कहा ये खुशी के लिए नहीं कहा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था इसलिए कहा, ये तुम्हारा ही नाम लिए जा रहा है बस। तो दादियों को बाबा ने क्या कहा कि स्वयं में फंसाने वाली नहीं। और ये हम सब के लिए भी है, क्योंकि हर एक कहीं ना कहीं निमित्त है, कुछ लोगों का जैसे हमने किसी को अगर ज्ञान सुना दिया और वो हमारे ही पीछे ही पड़ गया तो जब देखो तब बस यही गुणगान गाए कि इन्होंने हमको ज्ञान मिला है, इन्होंने हमको ज्ञान मिला है, हमारे तो सब कुछ आप ही हो, तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। इसीलिए कुछ कुछ संत क्या करते थे, पत्थर मारते थे भक्तों को, और जितना वो पत्थर मारते थे लोग और उनके पीछे जाते थे कि जरूर कुछ तो है। कोई कोई वो गाड़ के बाबा वो लाठी रखते थे, कोई आया कि लगाई लाठी एक। जो जिससे जितनी अच्छी पिटाई भक्तों पर, उल्टा उसका उल्टा भी परिणाम हो गया, भक्त जो ज्यादा पिट कर आता था वो ज्यादा भाग्यवान, ऐसा भी समझा जाता था। और जो जैन गुरु होते थे वो भी एक दंडा तो रखते ही थे अपने पास। जैसे जैन मास्टर बोकाजो के लिए बताया है कि वो जब युवा था अपने गुरु के पास पहुंचा और कहा कि मुझे स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट चाहिए, एकदम आध्यात्मिक जागृति। गुरु ने कहा अच्छा चल, उसको दूसरी मंजिल पर लेके गए, उसको कहा देखो क्या दिख रहा है, बोला बहुत अच्छा नजारा है, और धक्का देके फेंक ढकेल दिया, हाथ पैर टूट गए, हो गई आध्यात्मिक जागृति। तो दादियों से बाबा ने कहा कि तुम्हें किसी को भी अपने में फंसाना नहीं है। दादी प्रकाशमणि के बहुत अच्छे महावाक्य जो हर एक को अपने डायरी में नोट करके रखना है, मुझे शिव बाबा के अतिरिक्त किसी को याद नहीं करना है, यह पहला वाक्य। दूसरा कोई मुझे शिव बाबा से ज्यादा प्यार ना करे, मैं भगवान से ज्यादा प्यार किसी से ना करूं, और दूसरा कोई मुझे भगवान से ज्यादा प्यार ना करे, उसके जीवन में मैं भगवान बन जाऊं, यह भी माया है। अगर मैं किसी के जीवन में इतना, तो जरूर मैंने उसे बहुत व्यक्तिगत ध्यान रखा होगा उसकी तरफ, इसीलिए तो उसका सारा ध्यान मैं बन गया हूं, उसकी थोड़ी जरूरत से ज्यादा ही पालना की है जितनी नहीं करनी चाहिए थी, इसीलिए वो चिपक गया है। तो आज हम रिवाइज करेंगे संडे की वाणी, जो पहला भाग हमने देख लिया था, क्या देखा था उसमें, भाग्यवान आत्माओं की नौ निशानियां। पहली, उनके हर कर्म में क्या वो अपने आप को भाग्यवान अनुभव करेंगे। दूसरा, दूसरे उनको चलन और चेहरा देखकर समझेंगे कि ये बहुत भाग्यवान है। तीसरा, उनके कदम इस धरती पर नहीं रहेंगे, कहां रहेंगे, गोदी गलीचा और झूला, इस धरती पर पैर नहीं रखेंगे वो, धरती अर्थात शरीर। चौथा, किससे खेलेंगे, ज्ञान रत्नों से खेलेंगे बस, और किसी से नहीं खेलेंगे। शरीर से खेलना, शरीर को देखना, शरीर में रस लेना, शरीर की इच्छा है, शरीर की तृष्णा है, शरीर के भोग, शरीर की वैसी वास्तविकता देखना जैसे संसार देखता है वैसी नहीं देखेंगे वो, शरीर का संपूर्ण वास्तविक रूप वो नहीं है जो दिखाई देता है, वो कुछ और है। उसके बाद में पांचवा, इच्छा मात्रम अविद्या होंगे वो, क्योंकि संपन्न है, कोई इच्छा नहीं है, कोई चीज देखी तो ऐसी इच्छा नहीं कि ये मेरे पास हो, कोई नई चीज वहां देखी तो ये मेरे पास हो, अंदर से संपन्न है, ये लू वो लू, ये खाऊं वो खाऊं, इधर देखूं उधर देखूं, यहां जाऊं वहां जाऊं, अगर आ जाए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। उसके बाद में छठवा, नहीं, महादानी होंगे इसलिए दूसरों का कल्याण करते रहेंगे। उसके बाद में ताज तख्त और तिलक उनके पास होगा। उसके बाद में त्यागधारी होंगे, बिना त्याग के भाग्य नहीं, वो हर चीज जो हमारे भाग्य के बीच आ रही है, वो हर चीज जो हमें भगवान से दूर कर रही है, क्या करना है उसका, ताक त्याग कर देना है। कल की मुरली में सांप का उदाहरण दिया था बाबा ने, क्या कहा था, सपेरा क्या करते हैं? दांत निकाल देते हैं। बाबा क्या करते हैं? काम की तुलना विष से की गई है। संगम युग पर जब कलयुग में रावण के पास एक ही शस्त्र है, कौन सा शस्त्र है वो? जो सबसे शक्तिशाली शस्त्र है उसका हिंदी में कहावत तो नहीं कहेंगे, पर ऐसा कहा जाता है विष ही शस्त्र है। विष ही शस्त्र है जो विष कन्याएं होती है। विष कन्याएं पता है, जिनको बचपन से विष खिलाया जाता है थोड़ा 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 थोड़ा, कहानियों में आता है विष कन्याएं, जिनको बचपन से थोड़ा 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 विष खिलाया जाता है, फिर सांप काटे कुछ भी काटे उनको कुछ नहीं होता है, उनके श्वास में विष होता है, हा कर दे तो सामने वाला बेहोश होकर गिर जाए। केवल नस नस में विष भरा होता है सांप का, सर्पों के साथ खेलती है वो, सर्पों को उनसे डर लगता है। हाँ, तो ऐसी विष कन्याएं उनको बचपन से उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और कहा जाता है उन्हें नमक से दूर रखा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, वो लोगों का गायन है विष ही शस्त्र है। उस तरह इसी तरह कलयुग में रावण का भी एक बृद्ध वाक्य है, विष ही शस्त्र है, और विष अर्थात काम। उसके पास सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है? काम का। जैसे वो विष कन्या होती है, हा कर दे तो सामने वाला ओम शांति, अगर किसी खरोच भी दे तो गया, और थूक भी दे तो जिस भोजन में थूकेगी वो भोजन पूरा विषाक्त हो जाता है और कोई उसे बचा नहीं सकता। फिर विष कन्या है। तो रावण के पास भी एक वाक्य है इस समय, विष ही शस्त्र है और उसका शस्त्र है काम। तो यहां बाबा ने क्या कहा था? त्याग। वो हर चीज जो मेरे और भगवान के बीच आ रही है उसको विष की तरह त्याग दो। विषधर सांप, विषधर नागिन। कल सफेरे का उदाहरण तो दिया बाबा ने, पर अधूरा छोड़ दिया, पूरा उसको विस्तार किया नहीं उसका। आखिरी बाप समान निराकारी निर्विकारी निरंकारी। तो ये नौ निशानियां तो बहुत है, सुशील भाई ने तो 50 के ऊपर निकाल ली, तो निशानियां तो बहुत सुनाई थी, पर मुख्य मुख्य इतनी थी। तो आज हम देखेंगे दादियों से मुलाकात और दादी जी से मुलाकात। तो इसमें 5-6 बातें हैं। सबसे पहली बात है अनुभवी मूर्त। अनुभवी मूर्त, बाबा ने दादियों को क्या कहा? तुम सब कौन हो? अनुभवी मूर्त हो। दो शब्दों का प्रयोग बाबा ने सारी मुरलियों में किया है जो कहीं भी हिंदी साहित्य में नहीं है, मूर्त और स्वरूप। हर शब्द के पास प्रत्यय या इसके रूप में इसे जोड़ा है, सफिक्स। धारणा मूर्त, सफलता मूर्त, ज्ञान स्वरूप, त्याग मूर्त। एक तो स्वरूप शब्द जोड़ा है या तो मूर्त, मूर्त अर्थात मूर्ति इमेज, और स्वरूप अर्थात एम्बॉडीमेंट, उसका संपूर्ण स्वरूप। ये दो शब्द सारे जो नाउन है उसके आगे आगे जोड़े हैं कि तुम खाली वो नहीं बनो, ज्ञान नहीं, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान मूर्त, सेवा, और एक धारी शब्द भी जोड़ा है कई जगह पर। तो यहां पर बाबा ने कहा तुम क्या हो? अनुभवी मूर्त। अनुभवी मूर्त अर्थात केवल ज्ञान सुनाने वाले नहीं, परंतु उसका गहराई से अनुभव करने वाले, शब्द शब्द का अनुभव करने वाले। ज्ञान तो बहुत सुना दिया, ज्ञान दाताओं की संसार में तो भरमार है, इतने ज्ञानदाता भरे हैं, इतने ज्ञानदाता है, मेडिटेशन सिखाने वाले तो इतने हैं, ज्ञान सुनाने वाले अध्यात्म का तो इतने हैं, बात मत पूछो। पर यहां क्या है अंतर? अनुभव। तो जितने अनुभवी मूर्त बनेंगे उतने राज्य अधिकारी। दादियों से बाबा बात कर रहे हैं। ये भी कितना आश्चर्य वाली बात है कि भगवान किन से बात कर रहा है? साधारण आत्माओं से बात नहीं कर रहा है, वो जो यज्ञ की शुरुआत में आई जो छोटी छोटी बच्चियां थी उनको तो विकार क्या है उसका भी ज्ञान पता ही नहीं क्या है, उन्हें तो संसार का विश्व का नक्शा भी नहीं देखा, वो उस टेंडर एज यंग एज में यहां आ गई। ये जरूर वो आत्माएं हैं कितने ना मालूम कितने जन्म ये पवित्र रही होगी, कितने जन्म जन्म की ब्रह्मचारी है जो यहां जाकर ब्रह्माचारी बनी, कई सारे जन्म इनके प्योर हो रहे होंगे, कई सारे जन्मों में सन्यासिनी रही होगी, तपस्विनी रही होगी, भगत रही होगी, अनन्य भगत, साधारण भगत भी नहीं। तो ऐसी आत्माएं हैं ये सारी दादियां। तो सबसे पहला अनुभवी मूर्त, दूसरा पॉइंट है साथ। दूसरा क्या कहा, साथ। कब कब साथ रहते हो? अभी अभी मुरली चली है, सबने पढ़ी है सुनी है, आदि अनादि भक्ति काल में, अभी साथ, जाने में साथ, घर में साथ, राज्य में साथ, भक्ति में साथ, हर समय साथ, व्यक्त में साथ, अव्यक्त में साथ। 14 साल वहां साथ रहे तो 14 साल अर्थात कितने हो गए संगम युग के, संगम युग के 14 साल अर्थात कितने, ऐसे पापा ने प्रश्न पूछा है और छोड़ दिया। जो बुद्धि से अभी साथ है वो साथ रहेंगे, जो बुद्धि से अभी दूर है वो कभी साथ कभी नजदीक कभी दूर। तो बुद्धि का साथ अगर वो हमारे साथ रहता है तो हमसे कोई विकर्म नहीं होता है, और जब जब विकर्म हुआ है हमने उसका साथ छोड़ा है। योग की अवस्था में विकर्म नहीं होते, वियोग की अवस्था में विकर्म होते। योग की अवस्था में कोई व्यर्थ नहीं चलता है, वियोग की अवस्था जैसी होती है व्यर्थ चालू होता है, व्यर्थ और अयथार्थ। कल की मुरली में सुना ना, बाबा ने अभ्यास दिया है, कल किया है सबने, एक एक घंटे में 5 मिनट या सीधा 4-5 घंटे के बाद ही याद आया, कुछ था क्या? था तो लग तो रहा है कुछ तो। तो बाबा ने कहा 5 सेकेंड या तो 5 मिनट। उसके 8 फायदे बताए थे कल ये अभ्यास के। पहला, मन खींचेगा नहीं, अयथार्थ व्यर्थ संकल्प से मुक्ति होगी। दूसरा, मन एक रस हो जाएगा। तीसरा वो पहला हो गया, शक्तिशाली आखिरी है। तीसरा, कल सुनाया था ना सर, आज वापस मुरली पढ़ो, इसका मतलब कल फिर से नहीं पढ़ी है। नहीं, 1 सेकंड, 7वां है, जैसा उसमें दिया है वैसे फिर से पढ़ना है आज सबको मुरली, वो उतना पैराग्राफ कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये एक्सरसाइज से क्या क्या फायदे होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कल यहां पर विस्तार से चर्चा की थी, आज वापस पढ़ो सभी। अनुभव, तीसरा क्या था, अनुभव, अभी नहीं बताएंगे वो कल बता दिया। चौथा तंदुरुस्त, पांचवा अलबेलापन खत्म, मन यंत्र बन जाएगा मन मनाभाव का, और 1 सेकंड में 7वां फुल स्टॉप लगेगा, और 8वां मन शक्तिशाली बन जाएगा। फिर से पढ़ना है ये सारी पॉइंट्स। कल की मुरली में क्या था, साकार मुरली सुबह की, पॉइंट्स का क्या करना है, नोट करो पॉइंट को, और क्या करो, हाँ, किसको सुनाओ, किसको सुनाओ, जो मिलो उसको सुनाओ, ब्राह्मणों को सुनाओगे तो युक्ति से सुनाना है, नहीं तो ब्राह्मणों को ज्ञान सुनाओगे तो स्ट्रांग एलर्जिक रिएक्शन होती है, ब्राह्मण ज्ञान सुनना ज्यादा पसंद नहीं करते। तो पॉइंट्स नोट करनी है, और क्या करनी है, अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालनी है, उनको याद रखनी है, उनको शेयर करना है, शेयर अर्थात खाली फॉरवर्ड करना वो नहीं, मुख से बोलना। नहीं तो कहेंगे हमने तो पूरी मुरली शेयर कर ली, पूरी की पूरी भेज दी उधर, वो नहीं। पॉइंट्स नोट करना, पॉइंट्स निकालना, पॉइंट्स को याद रखना, पॉइंट्स का स्वरूप बनना, पॉइंट रूप में स्थित होना, ये सारे काम करने, कल बोला ना सुबह सुबह, तो फिर से बोलो 8 पॉइंट्स कमलेश भाई। एक छड़ी रखनी पड़ेगी इधर बड़ी वाली, जिसको ज्यादा पड़ेगी वो भाग्यवान। इधर थी एक रखी थी, गायब कर दी। हम बड़ी छड़ी, हमारे ओपीडी में माताएं आती है कभी कभी, हम उनको बोलते हैं पॉइंट सुना मुरली की, वो कहती है ऐसे हाथ करती है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पर उसको बोलती तीन बार अभी अभी मुरली सुबह सुनी, फिर अभी तीन बार पढ़ी और अभी आई हूं। और पूछो क्या था, अग भाई। तो पहला अनुभवी मूर्त, दूसरा साथ। बाप साथ है, कैसे साथ रखना है, बुद्धि से साथ, संगम युग में साथ, अभी उसके साथ चलना, उसके साथ रहना, उसके साथ राजधानी में, उसके साथ भक्ति में भी, उसके साथ व्यक्त में, उसके साथ अव्यक्त में, उसके साथ सोते समय भी वो साथ रहे, चलते समय साथ रहे, उठते समय साथ रहे, बैठते समय साथ रहे, निरंतर साथ रहे, हमेशा ही साथ रहे। वो भगत थे, भक्ति मार्ग में दिखाया है, जन्म जन्म से भगवान की भक्ति की कि जब तुम आओगे हमको अपने साथ रखना, तो भागवत में दिखाया है वो सब कौन बन गए, वो गाय, गाय बन गई, सॉरी। कृष्ण ज्यादा समय किसके साथ बिताता है, वो गाय के साथ बिताता है, गोपियों के साथ थोड़ा कम, उनसे भी ज्यादा गायों के साथ रहता है। इसलिए जब शाम को आता है उसके शरीर पे धूल होती है, किसकी धूल, वो गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल, उसमें दिखाया कितनी उसकी अनन्य भक्ति है उनकी, वो भक्ति का फल दे रहा है। और गोपियां जन्म जन्म की कौन थी, वो सारी योगी तपस्वी महात्माएं, वो सब वो रासलीला दिखाई है ना, एक दृश्य है उसमें, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण घूम रहा है, और अचानक दिखता है एक एक कृष्ण के साथ एक एक साधु। वो गोपी गोपी नहीं है, साधु है, वो तपस्वी है, योगी आत्मा है, जन्म जन्म से जिसने भक्ति में मांगा था कि तुम जब आओगे तो तेरे साथ हम रहेंगे, वो आत्माएं हैं। वो भी कोई ना कोई होगा। तीसरा, आप में बाप का रूप दिखाई दे। तीसरा क्या कहे, बाप समान जैसे भगवान का रूप दिखाई दे उनमें, ऐसे बन जाओ। और ऐसे बन भी गए हैं, दादियां सभी बाप समान है, उनको देखो तो बाबा दिखाई देता है उनमें, साक्षात्कार मूर्त है, दिव्य दर्शनीय मूर्त है वो, उनकी झलक देखने के लिए ही भीड़ उमड़ पड़ती है, जनसमुदाय उमड़ पड़ता है, जहां वो जाती है वहां पर क्या हो जाता है, सैलाब आ जाता है जनसमुदाय का, ऐसी उनकी अवस्था है, स्थिति और प्रसिद्धि सब कुछ उनको प्राप्त है। क्यों, क्योंकि उसके पीछे इतनी बड़ी साधना, इतनी बड़ी धारणा, इतनी बड़ा त्याग है। दादी जानकी का ही देखो तो सारा जीवन त्यागमय है, अभी जो स्थिति प्राप्त है या स्थान प्राप्त है उसके पीछे एक त्याग की गाथा है, पूरा जीवन त्यागी और तपस्वी जीवन है। तो आप में देखे तो क्या दिखाई दे, बाप दिखाई दे। चौथा, स्वयं में फंसाना नहीं है, जिससे हमने क्लास की शुरुआत की, व्यक्तित्व की पूजा नहीं करनी है। कोई कितना भी अच्छा रहने दो परंतु उसका दीवाना नहीं हो जाना है। फैन, फैन, फैन अर्थात घूमते रहते, तो वो भी एक माया है। कान में डाल के क्लास सुन रहे, किसका क्लास, उसका क्लास। कान में डाल के क्लास किसका सुन रहे, उसका क्लास। अरे इसका क्लास उसका क्लास, शिव बाबा कहां है, भगवान तो है ही नहीं, बस क्लास ही सुनने में पड़े हुए, उसी का एडिक्शन हो गया है। तो जो भी है, पर एक बात याद रखना है कि हमारा संपर्क, हमारा कनेक्शन किसी देहधारी से ना जुड़ जाए, नहीं तो वो बाधा है। बुद्ध ने कहा है, मैं यदि तुम्हें रास्ते में मिलूं तो मेरा सिर काट दो, इफ आई मीट यू ऑन द वे कट माय हेड, अपने शिष्यों से बुद्ध कह रहे हैं। धम्मपद में ऐसा वाक्य, इसका कितना गुह्य राज है। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे मार्ग में बाधा ना बनूं, मुझे हटा दो। अगर मैं तुम्हारे मार्ग में बाधा बन रहा हूं तो अपो दीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो। वो आनंद जो उनसे भी बड़ा था, उनका भाई था दूर के रिश्ते का आनंद, 40 साल उनके साथ रहा, जहां बुद्ध सोते थे वहीं सोता था, फिर भी उसको भी कहते मेरा आधार नहीं लेना तुम अपना अपना देखो। अपो दीप भव, अपना आधार खुद बनो, एकला चलो रे। अठारह जनवरी की साकार मुरली, एक बाप दूसरा ना कोई, ये क्या है साकार मुरली? 18 जनवरी अभी अभी चली थी। ये अंतिम मंत्र है, ये क्या है? अंतिम मंत्र है, मंत्र बोला था। तो अपने में किसी को नहीं फंसाना, अगर कोई फंस गया तो हाँ जी, हाँ झगड़ा कर लेना थोड़ा सा। नहीं पर कभी कभी झगड़े से ना क्या होता है, और प्रेम बढ़ जाता है, आसक्ति और बढ़ जाती है, फिर मनाना रूठना चालू, मनाना वो सब चालू हो जाता है। इसीलिए उसमें भी थोड़ा खतरा है झगड़ा करने में। इग्नोर और इस पर भी एक बार हमने यहां पर क्लास हुई थी कि दूसरा हमें न फंसे इसके लिए क्या क्या किया जाए। कैसे? वो कहता है बस आप में ही भगवान दिखता है, आप बैठे रहते तो ऊपर से शिव बाबा दिखता है उसकी लाइट पड़ते हुए। अब ग्लानी और ऊपर ऊपर से प्यार नहीं, हमारा तो है ही नहीं, वो फंसे हुए हैं, आप क्या करें? पर बेचारे की प्रगति रुक रही है ना। तो बाबा ने दादियों को कहा अपने में किसी को फंसाने वाली नहीं, ये सुनने वाली की बाबा के महावाक्य सुनाने वाली है, ऐसा न्यारा और प्यारा, ये दादियों को बाबा ने कहा है। और पांचवी बात, ये टॉपिक चिंतन वाला है पर इस पर गहराई से और चिंतन करें। और पांचवी बात, डिवाइन यूनिटी, डिवाइन की स्मृति दिलाने वाली, डिवाइन को याद कराने वाली, स्मृति दिलाकर डिवाइन की तरफ ले जाने वाली, उसको कहते हैं डिवाइन यूनिटी। तो ऐसी पांच बातें दादियों से कही। सबसे पहला अनुभवी मूर्त, दूसरा साथ, तीसरा बाप समान, तीसरा बाप समान दिखे सबको, रूप दिखाई दे, और चौथा अपने में फंसाने वाले नहीं। क्योंकि ये अपने वाले फंसाने वाली बात केवल दादियों के लिए, हम अगर किसी का कोर्स भी करा दे, एक नया व्यक्ति है वो तो तुरंत उसी को समझने लगता है ना सब कुछ। टीवी में किसी का क्लास लेक्चर कुछ देख लिया, बस उसको लगता है ब्रह्मा कुमारी मतलब ये है, हमने उनको देखा इसलिए आए, तो उसमें फंसे हुए है वो तो धीरे 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 जैसे ज्ञान स्पष्ट होगा तो ये सब छूटेगा, नहीं तो ये इनिशियल स्टेज है किसी में फंसना, और इसमें बहुत खतरा है, डेंजर है, डेंजर। पांचवा डिवाइन यूनिटी, डिवाइन यूनिटी संगठन में होनी चाहिए हम सबके बीच, क्योंकि हम एक संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी कोई भी चलन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो संस्था के लिए आक्षेप, संस्था के लिए कुछ, संसार के कोई लोग कुछ कह दे, कोई भी इस तरह की हमारी चलन ना हो कि वो ये कह दे कि ये तो ब्रह्मा कुमारी वाले ऐसे ही है, लाइन लगी हुई है और हम सीधा लाइन तोड़ के चले गए तो क्या कहेंगे? हमें कुछ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ये ब्रह्मा कुमारी वाले हमेशा ऐसा ही करते ऐसा ही करते, उनका कमेंट ऐसा होगा, हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा, ये लोग ऐसे ही करते। तो ये पांच, उसके बाद में दादी जी से मुलाकात, उसमें क्या कहा? जिम्मेदार. क्या कहा? एक ही शब्द है, जिम्मेदार. बेकरी पार्ट में भी जिम्मेदार, मौजों के पार्ट था तब भी जिम्मेदार, जिम्मेदारी का पार्ट. बाबा ने कहा ताज केवल आपके लिए, साथी तो सब है, पर जैसे कृष्ण को बचपन में क्या दिखाया है, ताज, वैसे आप भी क्या पहने हो, ताज पहने हो. तो हमारा जीवन भी कैसा हो, ताज पहना हुआ है. कौन सा ताज पहना है हमने? जिम्मेदारी का ताज. बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर तुम्हें कोई सेवा दी गई तो जिम्मेदारी का ताज पहनकर वो सेवा करो, परंतु अंदर से बाबा को वो समर्पित कर दो. अंदर से बाबा को वो समर्पित कर दो, तो उस समर्पित समर्पण के एवज में बाबा तुम्हें शक्ति देगा वो जिम्मेदारी पूरी करने की. ऐसा नहीं कि बाबा को सौंप दिया मतलब हम बैठ गए, ये नहीं, फिर हमको ही करना है. बैलगाड़ी फंस गई है कीचड़ में और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आओ और निकालो, निकलेगी क्या? उद्यम, खुद परिश्रम करना पड़ेगा, कोशिश करके निकालनी पड़ेगी तो ही होगा. समर्पण कर देना अर्थात ये नहीं कि बस उसको दे दिया वो देखेगा, ये समर्पण नहीं. उसको दे दिया वो शक्ति भरेगा, अब करो उसको, ये है समर्पण. किसी को ना किसी को भेज ही देगा, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा. तो बाबा ने दादी को क्या कहा? दादी के लिए जिम्मेदार, हर कर्म जिम्मेदार, हर सेवा जिम्मेदारी से की, हर पार्ट जिम्मेदारी से निभाया. और जैसे बाबा जिम्मेदार थे, जाते समय भी देखे गया, वैसे आपने भी किया. बेगरी पार्ट, अव्यक्त पार्ट, सब पार्ट में जिम्मेदार. तो अपने जो भी कर्तव्य, जो भी सेवाएं हमको दी जाती है, वो सभी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करनी है. ऐसा नहीं कि बाबा बैठा है वो तो सब ठीक है, वो बैठा है, पर आपको एक सेवा दी गई है तो वो पूर्ण लगन से, पूर्ण मन से करनी है. नहीं तो फिर बाद में बोलेंगे हमको तो पता ही नहीं था, हम तो भूल गए थे. ये कहना रिस्पॉन्सिबल, ब्राह्मण अर्थात रिस्पॉन्सिबल. इतने बड़े वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर. तो ये दादी से बातें की. तो सार क्या हुआ? अनुभव साथ हमें वो दिखाई दे, बाप समान, और किसी को भी अपने में फंसाना नहीं है. क्योंकि हम फंसाते तब है कि जब हम उनकी विशेष पालना करते हैं, विशेष गिफ्ट्स, किसी को विशेष टोली, तो वो फंसेगा बेचारा. उसको नहीं समझ में आता ना ज्ञान की तो गहराई कितनी है. यहां तो सब मरे पड़े हैं. आज ही कहा ना मुरली का प्रश्न क्या है आज के? आज की मुरली का प्रश्न क्या है? मंजू बहन, आप टीचर है सबके, मुरली तो देखो ऐसी है ना, पारे मिसल, एक बार पढ़ी और बाद में किसी ने कुछ पूछा तो कुछ नहीं पता. इसलिए तो कला कहा वो क्या नहीं करते, किसी से नहीं, अब बाप से, बस बाप ने कह दिया वही फाइनल, बाप ने जो सुना दिया वही फाइनल. एक व्यक्ति था जिसको हर एक यही कहता था कि तुम ना ठीक नहीं हो, तुमने सुधरना चाहिए, तुम ये जो करते हो ना, तुम्हारी आदतें ठीक नहीं है, तुम्हारी चलन ठीक नहीं है, तुम्हारा बोलना ठीक नहीं है, तुम्हारी जो सोच है ना उसमें बहुत निगेटिविटी है, हर चीज उसकी खराब है. उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके दोस्त, उसके ऑफिस वाले सब लोग उसको आके एक ही चीज सुनाते थे कि तुम ये ठीक नहीं करते, तुम वो ठीक नहीं करते, तुम जब भी बोलते हो गड़बड़ होती है, चुप रहा करो, जो भी प्लानिंग बनाते हो वो फ्लॉप हो जाती है. और वो भी सोचता था मैं कैसा व्यक्ति हूं, मेरा सब कुछ खराब है, मुझे भी अपने आप को बदलना है पर मैं बदल ही नहीं सकता, क्या करूं, कितनी कोशिश करता हूं खुद बदलने की पर नहीं बदलता हूं. एक बार उसका बहुत पुराना दोस्त आता है, कहता है तुम जो हो, तुम जैसे हो वैसे मुझे पसंद है, तुम क्यों बदल रहे हो, मैं चाहता हूं तुम बदलो ही नहीं, तुम ऐसे ही रहो, तुम जो हो ना बस वैसे ही मुझे चाहिए और ऐसे मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं. और बस वो जो पल होता है वो उसके परिवर्तन का पल बन जाता है. क्योंकि आज तक उसे पहली बार एक व्यक्ति ऐसा मिला, एक घनिष्ठ मित्र, कि जिसने कहा कि मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं, तुम क्यों बदलने की कोशिश कर रहे हो, तुम जो हो ना बस वैसे ही ठीक हो, विद ऑल योर फॉल्ट्स, तुम्हारी सारी कमियों के साथ तुम मेरे मित्र हो और मुझे बहुत गर्व है तुम पर कि तुम मेरे मित्र हो। और बस उसी समय वो परिवर्तित हो जाता है। द्वापर से हमने आ कि लोगों ने हमको क्या कहा, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, ये बदल दो वो बदल दो, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। भगवान अंत में आके कहता है कि तुम जो भी हो, आए बराबर उसने शिक्षाएं देना नहीं चालू की, पहले क्या किया, बहुत प्यार, प्यार दिया प्यार दिया। और कभी उसने कहा मुरली में सीधा डायरेक्ट कि बाहर का खाना बंद कर दो, मीठे बच्चे आज से बाहर का खाना बंद, दूसरा मीठे बच्चे ब्रह्मचर्य नहीं तो आउट, कहा ऐसा? पहले साकार अव्यक्त मुरली में क्या होता है, तुम बाप दादा के मस्तक के वो हो, गाले को गालों के वो हो, होठों के वो हो, हाथों के वो हो, पैरों के वो हो, दुनिया के वो हो, ऐसा हो, फला हो, ढला हो, इधर के हो, उधर के हो, क्या कुछ हो। और फिर बाद में चुपके से बाप दादा को मुस्कुराते हैं, बाप दादा तुमको देखते कहते तो हो कि बाप ही मेरा संसार है, पर ये दूसरा संस्कार कहां से आया। धीरे धीरे उसकी टेक्निक जो है ना, बड़ी पावरफुल टेक्निक है, ही इज द बेस्ट टीचर। उसकी टीचर की वो जो है ना, फिर धीरे से धीरे धीरे समझाते हर चीज। बाबा आप हमारे गांव चलो, कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलू, बाबा इसको समझाओ। मैं क्यों समझाऊं, मैं भगवान हूं, तुम माली हो, तुम माता फोड़ो, मैं क्यों माता मारू, मैं थोड़ी समझाऊंगा। नयों को नहीं लाओ, ये तुम्हारा काम है कांटों से फूल बनाना, फिर बाद में लेके आना, ये सब बाद में बताए। पहले धीरे धीरे प्यार प्यार प्यार, आत्मा खुद ही परिवर्तित हो गई, सब खुद ही करने लगी। किसी को किसी ने बताया नहीं, तो मुरली आया करो आया करो आया करो, वो खुद ही उसको इच्छा होने लगी कि मैं जाऊं, मैं सुनू, मैं समझू। तो परिवर्तन का आधार प्रेम है। ठीक है, ओम शांति।
एक तेरा संग हो।